नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा ओवलन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है और 18 से 44 वर्ष के युवाओं को वैक्सीनेशन का कार्य आने वाले दिनों में होने वाला है, आज हमारे साथ में जनपद सदस्य संदीप जी भकने जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश जी।
सर, जिस तरीके से 18+ के युवाओं को वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं, तो सर सेंटरों पे जो लोगों की भीड़ उमड़ रही है सर, तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है
जी
उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुधारना चाहिए। जितने सेंटरों में वैक्सीनेशन एक दिन में होना पॉसिबल है उतने ही लोगों को बुलाना चाहिए सेंटर पे, और उनका टाइम फिक्स होना चाहिए। 100 लोगों को अपन एक एक सेंटर पे बुला रहे हैं तो उनका टाइमिंग क्या होगा? वो ऑनलाइन में एक ऑप्शन था कि डेट और टाइमिंग का, पर उसमें वो शो नहीं कर रहा है। और अपने यहाँ अभी तो अपने यहाँ अवसर में शुरू होने का है, बाकी जगह तो अच्छी भीड़ उमड़ रही है। अच्छी बात भी है कि युवाओं में वैक्सीन के प्रति सकारात्मक सोच है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, नहीं तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि कई लोगों को भ्रामकता फैला दी है कि इससे साइड इफेक्ट होते हैं, बीमार होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन लगाना चाहिए। और युवाओं में जागरूकता है
जी
और वैक्सीन
जी
लगाने के लिए युवा तैयार है।
सर, जिस तरीके से ये पंजीयन हो रहा है कोविड का, सर कई लोगों को समस्या आ रही है, उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, सर इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उनकी समस्या का समाधान भी हो सके? कई ग्रामीण अंचलों में ऐसा देखा गया है कि उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है और कई इससे वंचित भी हो रहे हैं, और कोई लोगों को कोई समस्या भी बहुत अधिक आ रही है वैक्सीनेशन के पंजीयन को लेकर।
स्थानीय लेवल पे ये व्यवस्था होना चाहिए कि यदि किसी का पंजीयन करने में कठिनाई आ रही है तो वो स्वास्थ्य विभाग में संपर्क कर ले, या बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उसको उनको नहीं जमता कि एंड्रॉइड मोबाइल का इस्तेमाल पूरे लोग 100% कर सके। पर
जी
जो नई पीढ़ी है 18+ में, उनमें तो सब में आज मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल चलाने का ये है, बहुत 10% लोग होंगे जो जिनको कठिनाई आती है, तो उन्होंने किसी का सहयोग ले सकते हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग ने भी एक हेल्पलाइन ये करना चाहिए कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो वहां जाके संपर्क करे और वहां से रजिस्ट्रेशन उसका हो जाए।
जी सर, बीते दिनों आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए एक राय दी थी। सर, आ, आ, आने वाले समय में, अभी वर्तमान में यह घोषणाएं हो चुकी है, सर इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, अपन ने मोबाइल वाणी के माध्यम से इस बात को बहुत प्रायोरिटी से उठाया था कि आयुष्मान भारत का कार्ड प्रत्येक कोविड अस्पताल में चलना चाहिए और कोविड मरीज का इलाज होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा तो कर दी है, पर अब ये किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ये देखने वाली बात है। और ये जो घोषणा आज की है ये तो ये एक महापूर्व हो जाना चाहिए था, जो ताकि जो जनहानि हुई है वो न होती। बहुत सारे गरीब और निर्धन लोगों को पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में उनको उनका निधन भी हो गया और बहुत सारी कठिनाइयों का उनका सामना करना पड़ा। ये जो आज मुख्यमंत्री मोदी ने घोषणा की है, ये प्राइवेट अस्पताल वाले इसको अब किस तरह से लेते हैं ये आगे देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री ने इस संबल योजना को हर प्राइवेट अस्पताल में हर जरूरतमंद के लिए, और पूरे परिवार में यदि एक सदस्य का भी है तो पूरे सदस्य को उसका इलाज का लाभ मिले, ये घोषणा की है, ये बहुत अच्छी बात है।
जी सर, वर्तमान में करीबन 2 से 2.5 माह से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिले में। सर, कई जगहों पर राशन वितरण में समस्याएं आ रही है सर, तो सर इसको गरीबों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, सर किस तरीके देख रहे हैं?
शासन की उदासीनता है, हमारे यहाँ अफसरशाही है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में अफसरशाही फैली हुई है। जो शासन में नेता आता है उसको किस तरह से आम आदमी तक, अंत्योदय अंतिम सिरे के आदमी तक शासन की योजना का लाभ कैसे पहुंचे, इसका कोई सिस्टम हमारे देश में नहीं है। किसी भी सरकार में कैसे उस किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो, कैसे उसका संचालन हो, ये प्लानिंग हमारे सरकार और हमारे नेताओं के पास नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे लोकतंत्र के, भारत की कमजोरी है। हमारे देश के लोग नेताओं के लोक लुभावन आश्वासन में वोट देते थे, सरकारें चुन ली जाती है, बहुत सारे आश्वासन दे दिए जाते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बेरोजगारी ऐसी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, पर हमने देखा कि इतनी सी महामारी आई, हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाए, हम हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं बना पाए, हम गोली दवाई नहीं दे सके हमारे देश के लोगों को। तो हमारा जो इतना बड़ा सिस्टम है, हम जो बताते कि देश हमारा भारत देश एक विश्व गुरु बनने वाला है, तो कैसे बनेगा? इतने लोगों को खो दिया, हमारे पास इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग हमारी योजनाओं का अच्छे से संचालन नहीं कर सकते, हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा नहीं सकते। और आज जो घोषणा सरकारें और नेता कर रहे हैं, वो लोगों की जन हानि होने की बात कर रहे हैं। हमारी भी युवाओं की कमजोरी है, और इसको अब युवाओं ने समझना चाहिए कि किस तरह से नेताओं को चुने, किस तरह से सरकारें चुने, और कैसी व्यवस्था है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ज्यादा कैसे हॉस्पिटल जरूरी है, कैसे स्कूलें जरूरी है, क्या मूलभूत चीजें जरूरी है, क्या इस देश के लिए जरूरी है, अब ये सब आगे देखने और सोचने करने वाली बात है।
जी सर, जिले में अभी ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है, और जिस तरीके से जिले ने कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको लड़ते हुए आज जो रिकवरी रेट है वो 92% हो चुका है, सर किस तरीके से देख रहे हैं इसको?
देखिए, जो जन हानि होनी चाहिए थी वो हुई है, लोगों ने अपनी सतर्कता से अपने, इसमें सरकार का और नेताओं का कोई योगदान नहीं रहा है कि लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले। हमने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, आपके मोबाइल वाणी के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक टीवी के माध्यम से हमने देखा है कि किस तरह से लोगों की दुर्गति इस देश में और इस प्रदेश में लोगों की हुई है। ये खुद आदमी संभला है, खुद ने अपना इलाज किया, खुद ने अपने पैसे खर्च किए स्वयं ने, गरीब ने, किसी ने खेत बेचा, किसी ने प्लांट बेचा, किसी ने अपना मकान अपना इलाज कराया। आज ये बात अलग है कि लोगों की अभी जो पीक, ये जो कोरोना का संक्रमण है, इसका थोड़ा सा असर कम हुआ है, इसलिए लोग संभल पाए हैं, और अभी ऑक्सीजन की और इसकी इसकी सारी चीजों की व्यवस्था धीरे धीरे हो चुकी है, तो अभी बहुत कुछ दूसरी लहर काबू में है। सर, इसमें सरकार से ज्यादा, नेताओं से ज्यादा आम जनता का खुद का योगदान ज्यादा है, सरकार का योगदान कम है।
सर, 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन होने वाली है, और सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे, इसके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाया जाए ताकि युवा द्वारा भी कोविड सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, और जिस तरीके से कई लोगों की राय भी यह है कि सेंटर बढ़ाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और युवा अपने नजदीकी सेंटर पर पहुंच सके?
जागरूकता से ही सब कुछ होगा। प्रशासन ने जो समाज सेवी संगठन है उनकी मदद लेना चाहिए, समाज के जो सक्रिय लोग हैं, जो समाज सेवा करते हैं, कई संगठन समाज सेवा का काम कर रहे हैं, उनकी सहायता सहयोग लेना चाहिए, और जहां भी सेंटर होता है वहां थोड़ी उनकी ड्यूटी लगाना चाहिए, और लोगों को ये समझाना चाहिए कि देखो लॉकडाउन के कारण ही बहुत कुछ हमने कोरोना पे काबू पाया है, और सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए कितना जरूरी है। यदि हम वैक्सीनेशन के नाम पे भीड़ बढ़ाएंगे और फिर इसमें हम संक्रमित होंगे तो हमारे वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और प्रशासन ने सामाजिक संगठनों का सहयोग लेना चाहिए, सामाजिक लोगों का सहयोग लेना चाहिए।
जी सर, किसानों का भी एक सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से रासायनिक खादों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और इस कोरोना काल में किसान बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं इसको?
योगेश जी, मैंने तो एक भूख हड़ताल करने की तक की सोची, ऊपर ये कोरोना का ये जो कहर है, क्योंकि शासन के समझ में आना चाहिए, हम जैसे लोगों को हड़ताल और अनशन करने की नौबत नहीं आना चाहिए, और अब ये समय ऐसा है कि हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पर जिस तरह से किसान 2-3 वर्षों से परेशान है, कोरोना, बाजार भाव नहीं मिल रहा है उसके फसल को, और सारी मुसीबतें किसान झेल रहा है, उसके बावजूद भी 1700 रुपये की एक बोरी DAP की मिलेगी, उनको कपास का भाव नहीं मिल रहा है, उनको गेहूं का भाव नहीं मिल रहा है, उनको सोयाबीन का रेट नहीं मिला है, तो ऐसे में जो महंगाई बढ़ी है, खाद बीज की जो कीमतें बढ़ी है, इसको शासन ने वापस लेना चाहिए, टैक्स माफ करना चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी है उस पर भी सरकार ने नियंत्रण करना चाहिए, लोगों का जो 2 साल का 3 साल का जो कर्जा है उसका ब्याज कम से कम माफ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए, और कर्जा यदि माफ नहीं होता तो कम से कम 2-3 साल का जिनका स्थगित है उनका ब्याज माफ करके उनको फिर से KCC या उनको कृषि लोन देना चाहिए, लोन देना चाहिए।
सर, वर्तमान में किसानों से चर्चा करने पर यह सामने आया कि सर वर्तमान जो ये साल चल रहा है इसमें सर किसानों की जो खेती को लेकर जो लगाव था वो शायद बहुत कम हो गया इन खातों के रेट निरंतर भरने से, रासायनिक खातों के रेट।
अनलिमिटेड किसानों के खाद के भाव बढ़ गए। जो बोरी डीएपी की 700 की, 800 की, 1000 की मिलती थी, वो आज 1700 रुपए की मिल रही है। और जो रेट हमको 10 साल पहले कपास के 5000, 6, 5500, 6000 रुपए मिलता, वो आज भी वही हमको भाव मिल रहा है। किसानों के उत्पादन का भाव बढ़ नहीं रहा है, और जो उनको खरीदी करना पड़ रहा है खाद बीज, उसके बहुत 10-10 गुना, 20-20 गुना तक भाव बढ़ गए। तो कैसे किसान जीवित रह पाएगा, कैसे अपने आप को बचाएगा? ऊपर से कर्जा, ये लॉकडाउन 2 साल से कोरोना झेल रहा है, सरकार की कर्ज माफी की घोषणा है उसमें भी उन्होंने वो सफल नहीं हुए। तो ये बहुत सारी चिंताएं किसानों की है, और सरकार ने सब कुछ छोड़ के भी पहले तो किसानों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल के महामारी में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सारे पूरे विश्व को पाला है, उन्होंने अन्न की पूर्ति की है। सारे उद्योग धंधे बंद रहने के बाद भी लोगों ने केवल खाना खाया है घर में रह के, और कृषि के कारण ही सब कुछ, सभी किसी का भी, सभी का जीवन आज जीवंत है, तो कृषि आधारित ही है। इसलिए किसानों की चिंता सरकारों ने सबसे पहले करनी चाहिए।
सर, अभी वर्तमान में आपके क्षेत्र में किस तरीके का वातावरण है कोरोना संक्रमण को लेकर?
अभी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता आई है लोगों में, यदि किसी को लक्षण बीमारी के लगते हैं, सर्दी खांसी या बुखार होते हैं, तो वो जाके सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करता है, कोरोना टेस्ट करता है, और घर में अपने क्वारंटाइन रहता है। सबके समझ में आ गई है कि ये बीमारी है और इसमें सतर्कता की जरूरी जरूरत है। तो आज आम व्यक्ति भी, ग्रामीण क्षेत्र का भी व्यक्ति सतर्क है, और हमारे गांव में भी, हमारे क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे, अभी 1 महीने पहले हमारा गांव तो 80% इस चपेट में आ गया, पर लोगों ने अपना इलाज करके धीरे धीरे, और अब सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सब लोग मास्क लगाते हैं, और यदि ऐसा कोई बीमारी का आए तो जल्दी से सरकारी अस्पताल या किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज कर रहे हैं
जी।
तो अभी स्थिति थोड़ी सी काबू में होते दिख रही है, पर इसी तरह से मेंटेन रहे तो स्थिति काबू में रहेगी।
सर, किसानों का जो रासायनिक खादों को लेकर जो भाव बढ़े हैं, तो सर वर्तमान में आने वाले दिनों में क्या शायद काला बाजारी बढ़ने की आशंकाएं शायद लग रही है, तो प्रशासन ने इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
प्रशासन ने किसानों के लिए तो सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रशासन क्या नहीं कर सकती, शासन के हाथ में सब कुछ है, पुलिस है, अधिकारी है, कृषि विभाग है, इनकम टैक्स है, कालाबाजारी वाले, ये सब सारी चीजें शासन के हाथ में। शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती, शासन सब्सिडी में खाद बीज उपलब्ध करा सकती है किसानों के लिए।
तो ये थे संदीप जी भकने, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर 18 प्लस के युवाओं को, चाहे पंजीयन के लिए हो, चाहे कोविड सेंटर के लिए हो, चाहे गरीबों का राशन हो, इसके लिए मोबाइल वाणी पर अपनी राय रखी। संदीप जी, मोबाइल वाणी के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद योगेश।
सिंगड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश।